بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہماری کلاس کا دوسرا دن ہے اور کل کی کلاس جہاں تک مجھے اندازہ ہوا اپنے تمام برانچز اور آؤٹ آف اسٹیشن آؤٹ آف سٹی بہت سارے لوگوں نے بہت سارے سوالات کیے, بہت سارے کمنٹس تھے. اس سے اندازہ ہوا کہ یہ کام آج کے وقت کی ضرورت تھی. بہرحال جو ہماری کلاس کا ایک سسٹم ہے, جو موضوع ہم نے آپ کو دیا ہے, ہم دو موضوعات پہ 30-30 منٹ گفتگو کریں گے, خاندان اور تربیت اولاد, اور دوسرا موضوع امام زمانہ علیہ السلام قرآن کی روشنی میں اور امام کے ظہور کی نشانیاں. یہ دو موضوعات ہیں جسے لے کر ہم نے اس تھوڑے سے وقت میں آپ کا ٹائم لینا ہے. اور وہ جو ہمارے سامعین ہیں جو ماشاءاللہ میں فالو کر رہے ہیں, اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے اور ہماری اس کاوش کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کل مختلف برانچز کے ہماری بچوں نے سورہ نوح, اس کی تفسیر, اس کا ترجمہ ایک دوسرے کو بھیج رہے تھے. گروپس میں بچے ڈسکشن کر رہے تھے. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ہم سب اندرونی طور پہ قرآن کے اتنے پیاسے ہیں, اگر کوئی ہمیں قرآن کے چشمے سے متصل کر دے تو ہم سر کے بھل دوڑتے ہوئے قرآن کی طرف پناہ لیتے ہیں. اور کل سے آپ لوگوں کا تفسیر کی طرف رجحان, ترجمے کی طرف رجحان بتاتا ہے قرآن وہ محبت ہے جو ہمارے سینوں میں چھپا ہوا ہے. جیسے اہل بیت کی محبت ہمارے سینے میں ہے, اسی طرح قرآن کی محبت بھی ہمارے سینے میں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا, میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے اور دوسری اہل البیت ہے. ان دونوں سے اگر جڑ گئے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ہمارے دلوں میں اہل بیت سے محبت ہے, ڈیفینیٹلی قرآن سے بھی محبت ہے. اور ہم نے ان 10 دنوں میں اپنے اندر جو قرآن سے عشق اور محبت ہے اس کو پرکھنا ہے کہ ہماری محبت کی معراج قرآن سے کس قدر ہے. کہ اللہ فرماتا ہے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر قرآن کو ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اے انسان, اللہ نے تجھے اس قابل سمجھا ہے کہ تجھے قرآن جیسی کتاب عطا کر کے تلاوت قرآن, قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا کی ہے. پہلے میں اپنے پہلے موضوع کی طرف چلوں, خاندان اور تربیت اولاد. کل تھوڑی سی گفتگو ہوئی اور کل میں نے اپنے ان عزیز بہنوں سے, ماؤں سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اپنے دسترخوان کو کیسے امام زمانہ سے منسلک کرنا ہے وہ طریقہ میں بتاؤں گی. وہ میں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گی, لیکن پہلے یہ چند عرائض آپ سب سماعت فرمائیں. خاندان مجموعہ ہے ماں باپ اولاد. اگر خاندان کی ابتدا والدین سے ہے تو ہمیں والدین کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. کون ہے والدین؟ جن کی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے. کون ہے والدین جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی؟ والدین کا مقام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے ارشاد فرماتا ہے, والدین خصوصاً ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی. ایک شخص نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا مسجد النبی میں اور گڑ گڑا کے رو رہا تھا. اللہ کے نبی نے رونے کی وجہ دریافت کی, کہنے لگا, یا رسول اللہ, میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا, اتنا عظیم گناہ کہ مجھے نہیں لگتا اللہ مجھے معاف کرے. اللہ کے نبی نے سوال کیا, کیوں, تم نے کون سا ایسا کام کیا ہے جو تم اللہ کی رحمت سے مایوس نظر آ رہے ہو؟ کہنے لگا, یا رسول اللہ, ज़माने जाहिलियत थी। मैं सफ़र पे था, जब मैं वापस लौटा तो मुझे खबर हुई मेरे घर में बेटी की पैदाइश हुई। जब मैंने अपनी बेटी को देखा जो तकरीबन 2-2.5 साल की हो चुकी थी, मुझे अपने अंदर शर्म और नदामत का एहसास हुआ। मैं इस बच्ची को लेकर गया इसे जिंदा जिंदा दफनाने। जब मैंने ज़मीन खोदी, गड़ा खोदा, ये बच्ची मेरे साथ थी, जब गड़ा खोद लिया मैंने इस बच्ची को उसमें गाड़ दिया, जब मट्टी उसकी गर्दन तक पहुंची, वो मुझे बाबा बाबा कह के पुकारती रही, लेकिन मैंने उसकी बात ना सुनी, मैंने उस पर मट्टी डाल दी। अब जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ, मेरे कानों में मेरी बेटी की आवाज़ें गूंजती हैं। क्या मेरी ये गुनाह काबिले बख्शिश है? बच्चों सुन रहे हो ना, वालदेन भी सुन रहे। एक ज़माना ऐसा था जहाँ औलाद जिंदा बगौर कर दिए जाते थे, और ये इस्लाम का एहसान है इंसानियत पर, जिसने मर्द और औरत को बराबरी अता करके फरमा दिया कुरान ने, तुम में से बेहतर मर्द हो या औरत, बेहतरीन वो है जिसका अमल अच्छा हो। अमल के दारोमदार पे तोला जाता है, जिंसियत के दारोमदार पे नहीं। क्यों? क्योंकि औरत खातून अल्लाह की सिफात जमाल की मिसदाक हैं और मर्द अल्लाह के सिफात जलाल के मिसदाक हैं। अल्लाह ने सिफात जलाल बांटा मर्दों में, अपनी जमालिया सिफात बांट दिया खवातीन में। दोनों बराबर हैं, बेहतरीन वो हैं जिनका अमल अच्छा हो। ये इस्लाम का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह के नबी ने उस शख्स से कहा, क्या तुम्हारी वालिदा जिंदा है? सर झुका कर कहने लगा, नहीं या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा का इंतकाल हो चुका है। सवाल किया, क्या तुम्हारी खाला जिंदा है? कहा, जी या रसूल अल्लाह। फरमाया, जाओ अपनी खाला की खिदमत करो कि इस खिदमत के ज़रिए अल्लाह तुम्हारे इस अजीम गुनाह को बख्श देगा। अगर तुम्हारी वालिदा जिंदा होती तुम उसकी खिदमत करते, अगर वो नहीं तो अपनी खाला की खिदमत करो। वालिदैन का रुतबा इतना अजीम है कि अल्लाह ऐसे अजीम गुनाहों को भी वालिदैन की खिदमत के सदक़े में माफ़ कर देता है। कौन है वालिदैन जिनसे घर घर लगता है? कौन है वालिदैन? वो वालिद जो सुबह शाम अनथक मेहनत करके अपने बच्चों की जिस्मानी, इमोशनल, जज्बात, तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपने सारे सुकून को दाव में लगाता है। कौन है माँ जो अपनी तमाम आसाइशों को छोड़कर अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश, बेहतरीन तरबियत का सोचती है? ये वालिदैन जो अल्लाह की तरफ से ख़ास नेमत है औलाद के लिए, इनसे घर बनता है, इनसे ख़ानदान बनता है। इसलिए वालिदैन की इताअत, वालिदैन की खिदमत, वालिदैन का कि अमर व नहीं हुक्म सुनना औलाद पर फ़र्ज है। कल एक सवाल बहुत सारों ने किया था, बहुत सारों ने, और वो सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा। सवाल ये था, हम क्या करें इस उम्र में अपने वक्त के इमाम के लिए कुछ कर सकें? ये जवानों ने भी किया था, बड़ों ने भी किया था सवाल। जी, हम क्या करें अपने इमाम के लिए कुछ कर सकें? सुनिए, इमाम की इताअत वाजिब है, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत और उलुल अम्र की इताअत। उलुल अम्र के 12 इमाम हैं जिनकी इताअत सब पर फ़र्ज है। अल्लाह ने उस इताअत की एक छोटी सी तजल्ली हमें ख़ानदान की सूरत में देकर हमारी प्रैक्टिस करवाई है कि जो शख्स खानदान यानी माँ बाप की इताअत करने की एहलियत और काबिलियत रखता है, वही शख्स अपने इमाम हाजिर और इमाम गायब की भी इताअत की सलाहियत रखता है। अगर हमारे दिल में ये ख्वाहिश है कि हम क्या करें कि हम मौला के लश्कर में शामिल हो जाएं, तो ये देखो जवानों कि माँ बाप की इताअत कितना करते हैं। अगर माँ बाप की इताअत है तो समझ जाना इमाम के भी मुती बनोगे। मैंने रिसर्च किया, बहुत मैंने टाइम लगाया, तमाम सहाबे कराम, तमाम वो असहाब जिन पर जनाबे रसूलुल्लाह को नाज था, जिन पर जनाबे अली मुर्तज़ा मौला हसन हुसैन को नाज था, जैसे सलमान फारसी, जैसे अबू जर गफारी, जैसे मालिक अश्तर, जिन जिन सहाबा पे अल्लाह के नबी इमामों को नाज था, उन असहाब की जब मैंने हिस्ट्री देखी, उनमें से कोई ऐसा नहीं था जिनसे उनके वालिदैन नाराज। बस खानदान औलाद की तरबियत सबसे पहले माँ बाप। अल्लाह फरमाता है कुरान में, वला तुशरिक भी शैया, मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराना। अपनी वहदानियत के ऐलान के बाद अल्लाह फरमाता है, वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ नेकी करो। अगर वालिदैन कैद हयात में हैं उनकी खिदमत, अगर वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके लिए तलब मगफिरत करना। दुनिया चाहिए जवानों माँ बाप, आखिरत चाहिए जवानों माँ बाप। माँ बाप के अलावा, उनके रजा के अलावा अल्लाह राजी नहीं होता। अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो वालदे, एक जमाने में बड़ा अच्छा रस्म हुआ करता था, आजकल न जाने क्या हो गया। अच्छा दौर था वो, घर से रुखसत होते हुए माँ का हाथ छूम के जाते थे, माँ के सामने अदब से झुक कर जाते थे। और जो लोग इस अदा इस तरीके से निकलते थे, अल्लाह उनके वक्त में भी बरकत देता था, रिस्क में भी बरकत देता था। अब नया दौर है ना, मैसेज कर दिया माँ ओके बाय, या लिखने की भी जहमत नहीं की, कोई तस्वीर भेज दी, हम चले। अगर जिंदगी में रिस्क में बरकत चाहते हो वालदेन को राजी रखो। जवानों सुन लो आज ये बात, अगर कोई शख्स अपने वालदेन की तरफ मुस्कुरा के देखे, मोहब्बत भरी निगाहों से देखे, अल्लाह तबारक व ताला अपने अर्श के दरवाजे उस पर खोल देता है। चार मकामात पे अल्लाह के अर्श के दरवाजे खुलते हैं, चार मकामात। पहली, जब आपकी नजर खाने काबा पे पड़े, अर्श के दरवाजे खुलते हैं। दो, जब बारिश हो। तीन, जब जमीन पर निकाह खुतबे निकाह पढ़ा जाए। चार, जब औलाद अपने वालदेन की तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से देखें। इन चार मकामात पे अल्लाह तबारक व ताला अपने अर्श अपने रहमत के दरवाजे खोल देता है, जिसके नतीजे में अल्लाह उसके गुनाहों को झाड़ते हुए उसके हसनात में इजाफा फरमाता है। बस जवानों आज वालदेन को हम टाइम देते हैं, आज वालदेन के बारे में सुन लेते हैं, और इंशाल्लाह जब हमें अपने वालदेन की कदरदानी का सलीका तरीका आ जाए, तो फिर हम खुद अच्छे वालदेन बन सकते हैं और अच्छी औलाद की तरबियत भी कर सकते हैं। ये रहा खानदान और औलाद की तरबियत के हवाले से। आजकल क्योंकि हम सब घरों में हैं, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा आवाज़ का ज़्यादा होना, थोड़ा सा बच्चों में, घरों में थोड़ा सा हिलजुल थोड़ा ज़्यादा है, क्या ख्याल है? आवाज़ें ज़्यादा आती हैं, शोर ज़्यादा होता है, थोड़ा सा गुस्सा भी ज़्यादा आता है। वालदैन ग्रामी, सूरह अलम नशरा, सूरह इनशरा हर नमाज के बाद ज़रूर पढ़ें। ये सूरह इंसान के अंदर ठहराव अता करता है। गुस्से को कंट्रोल करने की तौफीक देता है। गुस्सा वो चीज़ है जो घर के सुकून के शिराजे को बिखेर देता है। गुस्सा वो चीज़ है जिससे दूरियां पैदा होती हैं। गुस्सा वो चीज़ है जिसकी वजह से शायद जिस्म करीब हो, दिल दूर रहते हैं, दिल दूर हो जाते हैं। अगर बच्चों में, घर में उल्फत चाहिए, गुस्से पे कंट्रोल कर, गुस्से पर। और ये गुस्सा किस बला का नाम है मैं बताती हूँ। गुस्सा सिर्फ मैं और आपकी एक सोच है, सिर्फ जो इंसान अपने सोच और ख्यालात पे कंट्रोल कर सकता है उसे गुस्सा नहीं आता, वो मंतकी आकलाना सोचता है। आज मैं एक मिसाल देती हूँ, रोज़ा तो नहीं है बच्चों, अगर रोज़ा हो तो चलो इस मिसाल में ना मेरा साथ देना, समझे ये मिसाल है। हाँ समझिए, आपके सामने एक प्लेट है और उस प्लेट में काफ़ी सारे लीमू रखे हैं। ये लीमू हमने काटा, एक गिलास उसमें इमली का पानी है, ओए होए होए, चम्मच हिला दिया, अब इसमें 5-6 लीमू नचोड़ दिया, इमली का पानी और लीमू नचोड़ के क्या हुआ, सबके मुंह में पानी आने लगा। ऐसे ही चलो पानी निकल जाओ, न मेरे सामने लीमू था, न मेरे सामने इमली का पानी था, ना आपके सामने था, सिर्फ मैंने जब बात की तो मेरे दिमाग ने रिएक्शन ऐसा दिया कि मेरे मुंह में पानी आया और मुझे लगा कि जैसे मेरे सामने ये पानी है जिसे मैं पी लूं। बस लीमू इमली का पानी नहीं है बच्चे यहाँ, लेकिन आपके मुंह में पानी जरूर आया। गुस्सा भी इसी तरह, आपके ख्याल में, सोच में जो चल रहा है उसके नतीजे में आपकी बॉडी रिएक्शन ऐसे देती है कि आपकी आवाज ऊंची हो जाती है, आपके मुंह से कुछ नाजेबा जुमले निकल आते हैं। अगर वो जुमले बाद में हमें सुना दिया जाए तो हमें खुद शर्म से आते हैं, यार हम क्या बोल गए उससे। अगर कोई सिचुएशन ऐसी बने जिसमें आपको गुस्सा आने लगे, प्लीज कंट्रोल, सिर्फ सोचें कोई बात नहीं, बच्चे शोर तो होता है, कोई बात नहीं, बेगम के हाथ से चीज़ गिर गई, कोई बात नहीं, मियाँ जी चीज़ उठा रहे थे उनके हाथ से चीज़ गिर गई, नो प्रॉब्लम। मेरे गुस्सा करने से या मेरे टेंशन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट ओनली 1 सेकेंड आपकी सोच आपके गुस्से पे कंट्रोल। आज का फार्मूला। और दूसरा फार्मूला जो मैंने बताया था, कल मैंने आपसे कहा था कि मैं आज बताऊंगी, आजकल कुकिंग कैसी चल रही है। आजकल कुकिंग हम खुद कर रहे हैं, ऐसे ही है ना, और खाना पकाना अल्हम्दुलिल्लाह आजकल माएं किचन की एक्सपर्ट हो चुकी हैं और रोज फरमाइशी खाने भी चल रहे हैं। मेरी बहनें, मेरी माएं, रिस्क की चंद किस्में, रिस्कन हलालन तय्यबन ताहिरन। रिस्क हलाल वो है जिसमें हराम मिलावट ना हो। रिस्क तय्यब क्या है, रिस्क ताहिर क्या है, अब सीरियस होके सुनना है, ये चंद मिनट सीरियस, और अगली जो हमने सूरह नूह पे डिस्कस करना है वो भी बहुत सीरियस होके हमने सुनना है। गौर फरमाइए, रिस्कन हलालन तय्यबन ताहिर। रिस्क हलाल वो जिसमें हराम मिलावट ना हो, और रिस्क तय्यब और ताहिर क्या है। तफसीर अल बुरहान रिवायत जिक्र है, अजीब रिवायत है, एक मरतबा एक खातून कोई हलीम या कोई फिरनी कोई इस तरह की चीज बनाकर मस्जिद लाई, कही या रसूलल्लाह ये मैं आपके लिए बनाकर लाई हूँ, ये तय्यब ताहिर और हलाल माल है, हलाल रिस्क है, ये आप तनावुल फरमाएं। जब वो प्याला सामने रखा, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मोहतरमा ये रिस्क हलाल ज़रूर है, तय्यब नहीं है। कहा या रसूलल्लाह नहीं, मैं हलाल कमाती हूँ, लकड़ियाँ इकट्ठे करके बेचती हूँ और ये उसका पैसा है। फरमाया तुझे याद है एक दिन तू खरीदो फरोख्त कर रही थी, अजान की आवाज़ आ, और तुमने आजान की आवाज पे कान नहीं धरे और तू अपना मामला करती रही, मामला